नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतवार के दिन आप सब लोग समय निकाल कर आए हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समय से पहले आए। जब हम जाते हैं कथा करने के लिए तो लोग कथा शुरू होने के बाद में आते हैं, आप लोग कथा के पहले आए हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा संक्षेप में परिचय ऐसा है, मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद शानबाग है और गुरुजी द्वारा दीक्षा के बाद दिया हुआ नाम विश्वरूप दास है। यहाँ पर 3 किलोमीटर के आगे एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, 150 बेड का, उसका मैं उपसंचालक हूँ यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। और हमारे हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर, जो एक अनोखा डिपार्टमेंट है, हर जगह पर नहीं होता है। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मरीजों को स्पिरिचुअल केयर देते हैं, बहुत जरूरी है। फिजिकल केयर और साइकोलॉजिकल केयर, साइकियाट्रिक केयर, सोशल केयर, मेडिकल सोशल वर्कर करते हैं, लेकिन जो फोर्थ डायमेंशन है हेल्थ का, वो अक्सर लोग उसको दुर्लक्ष कर देते हैं, इग्नोर इट। तो विशेष रूप से उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए ये डिपार्टमेंट खोला गया है, तो वो डिपार्टमेंट मैं संभालता हूँ वहां पर। मैंने जे हॉस्पिटल से 1985 में MBBS किया है, उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसमें किया है मैंने 5 साल पहले। और मैंने एक एक विषय है ऐसा स्पेशल विषय जिसमें लोग जब मरण मृत्यु के बहुत पास चले जाते हैं ना, एकदम मरने वाले हैं, मतलब मृत्यु निश्चित है उनकी, उनको ऐसा रोग हो गया कि जिससे उनकी बीमारी अभी ठीक नहीं हो सकती, मृत्यु की ओर निश्चित बढ़ेंगे, वो उनको कहते हैं मरणासन्न यानी कि अबाउट टू डाई। तो उनकी देखभाल को कहते हैं पैलिएटिव मेडिसिन, मतलब हिंदी में कह सकते हैं आराम देने वाली सेवा। वो ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका दर्द जो है वो निवारण कर सकते हैं। कोई चिंता है उनको, कोई वेदना है उनके मन में, कोई परेशानी है, कोई दुख है किसी बात का, वो सब तरह का जो शरीर का दुख, मन का दुख, समाज की तरफ से परिवार का जो कुछ कष्ट होगा, वो हर प्रकार से उनको दर्द से मुक्त कर देते, वेदना रहित कर देते। और बिना दर्द की अवस्था में जब आएंगे वो, तब वो कुछ सोचने लायक बन जाएंगे, क्या करें अभी, कैसे कर सकते हैं इस स्थिति का सामना। तो उनको फिर ऐसे वेदना रहित स्थिति में उनको भगवान का विषय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं और उनको मृत्यु की तैयारी कर देते हैं। अक्सर लोग मृत्यु को कोसते हुए, डरते हुए, रोते हुए मरते हैं आमतौर पर, लेकिन मृत्यु को भी एक आनंदमय घटना बना सकते। डेथ कैन बी अ वेरी हैप्पी इवेंट, क्योंकि वो निश्चित रूप से है ना, प्राकृतिक रूप में हर व्यक्ति को जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, लेकिन हर लोग, हर व्यक्ति जन्म के बाद पेड़े बांटते हैं और मृत्यु में बहुत रोते हैं। दिस इज द रूटीन सिचुएशन। तो मृत्यु को भी कैसे प्राकृतिक मानकर शूरवीरता के साथ उसका सामना कैसे कर सकते, ये भी मुमकिन है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हर मृत्यु दर्दनाक होती है, मृत्यु भी भगवान के ध्यान में, उनके भजन में आनंदमय हो सकती है। मृत्यु भगवान को मिलने का एक शुभ घड़ी हो सकती है। संत लोग तो मृत्यु को पाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बाकी लोग डरते हैं, क्योंकि वो डरते क्यों हैं, हम नरक में जाएंगे, यातना भोगेंगे, दंड भोगेंगे, इस भावना से मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो मृत्यु का इंतजार करते हैं, क्योंकि मृत्यु मतलब क्या, उनके प्रिय भगवान को मिलने का एक सुनहरा मौका। इस साइंस को कहते हैं पैलिएटिव मेडिसिन, इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है, इसमें डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, फेलोशिप भी होती है। तो इस विषय में हमने 2007 में अमेरिका में जाकर फेलोशिप किया है, और उसके बाद में हमने हॉस्पिटल में हमारे ये जो विशेष विभाग है इसका नाम है हॉस्पिस। हॉस्पिस का मतलब क्या है, वहां पर लोग आते हैं और आगे चले जाते हैं, घर लौट के जाते नहीं। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, आप जाते हैं, भर्ती होते हैं और ठीक होकर घर चले जाते हैं, इसको हॉस्पिटल कहते हैं। और हॉस्पाइस यानी उसमें व्यक्ति जाता है केवल मरने के लिए, तैयारी से जाता है, उसको पता होता है, लेकिन मृत्यु आसान करने के लिए, दर्द से मुक्त होने के लिए और भगवान का विचार करने की तैयारी करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो हमारा एक हॉस्पिस जो है वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के अंदर ही है, और एक विशेष रूप से अलग हॉस्पिस बनाया गया है, वो वृंदावन में है। वृंदावन में हमारा जो इस्कॉन का मंदिर है उसके 5 मिनट आगे परिक्रमा रास्ते पर जमुना किनारे हमने हॉस्पिस खोला है 23 बेड का। जो भी लोग मरणासन्न होते हैं वो सब वहां पर आ जाते हैं, जैसे मानो वो आखिरी स्टेशन है। यू गो देयर, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू थिंक ऑफ द लॉर्ड एंड लीव फ्रॉम देयर। तो हर जीव का गंतव्य स्थान जो है भगवान है, हम जानते नहीं है, कुछ लोग भूल चुके हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, लेकिन भगवान को छोड़कर फिर यहां वहां भटकते रहते हैं, है ना, कहीं इस लोक में, कहीं उस लोक में, कभी मनुष्य जीवन में, कोई जानवर के जीवन में, कोई पंछी के जीवन में, कभी पेड़ के जीवन में, कभी कुछ के जीवन में, क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए हम भटकते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य बन जाते हैं तो फिर हमको ये मौका मिलता है समझने का कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनका रिश्ता क्या है, और हम यहां पर क्यों हैं, हमें दुख क्यों होता है, मरना क्यों पड़ता है, बीमार क्यों होना पड़ता है, बूढ़ा क्यों होना पड़ता है। तो जवान रहना चाहते हैं, 16 साल की उम्र में हमेशा रहना चाहते हैं, इतना जोश, इतना उत्साह, इतना आनंद हुआ करता था, लेकिन हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, हमारे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, शरीर के अवयव बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और आखिर में मृत्यु क्यों हो रही है। ये सब जो मैंने अपने प्रश्न उच्चारण किए ना, ये तो हजारों प्रश्न में से कुछ मैंने प्रश्न बताए, ये प्रश्न पूछने के लिए ही मनुष्य का जीवन दिया है। क्योंकि पंछी के जीवन में तो ऐसा प्रश्न पूछ नहीं सकते ना, पंछी आपको पूछता है क्या, आंटी जी मुझे मृत्यु क्यों हो रही है, मैं मर क्यों रहा हूं, ये दुख क्यों हो रहा है, ये पंछी नहीं पूछ सकते। वो केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, विश्राम करना, और कोई बड़ा पक्षी आया तो रक्षा करना, बस इतना सोच सकता है वो, इसके आगे सोच नहीं सकता है। हम भी खाना खाते हैं, हम भी आराम करते हैं, हम भी परिवार के द्वारा पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करते हैं, और हम भी अपनी रक्षा करते हैं, ताला लगाते हैं, FD में पैसा रखते हैं, लॉक में रखते हैं, अपने आप को कभी शस्त्र रखते हैं, हम भी सुरक्षा करते हैं अपने आप। लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल ये 4 चीज करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं दिया गया है, मनुष्य जीवन कुछ आगे है इसके। अगर आहार, निद्रा, सुरक्षा और परिवार का पालन इतना करना होता तो चींटी के दिमाग में जितना ब्रेन रखा है ना उतना भी काफी है, क्योंकि चींटी भी बढ़िया तरह से करती है ना, वो भी भोजन का इंतजाम करती है, मेहनत करती है, वो भी विश्राम करती है, वो भी और चींटियां उत्पन्न करती है, और अपनी रक्षा भी करती है, कुछ संकट आया तो आप रखेंगे उंगली बीच में तो वो रास्ता बदलती है, डर लगता है उसको है? तो हमें ये मनुष्य का जीवन क्यों दिया गया है, और अच्छी तरह से आहार, और अच्छी तरह से निद्रा, और अच्छी तरह से परिवार का पालन, और अच्छी तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी रक्षा करना, केवल इसके लिए नहीं दिया गया। अगर इतना ही काम होता तो इतना बड़ा दिमाग की जरूरत क्या होती। जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तो सब लोग बोलते थे, आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, इतनी इतनी बड़ी किताबें पढ़ते हो, आपको याद कैसे रहता है सब कुछ, ये एग्जाम भी देना पड़ता है, बाद में आपको अमल भी करना है उसके ऊपर, आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, ऐसे लोग हमको बताया करते थे। लेकिन जब मैं भक्ति मार्ग में आया और जब मैं भगवद गीता पढ़ने लगा, श्रीमद भागवत पुराण पढ़ने लगा, तब मुझे एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि जितना दिमाग भगवद गीता को समझने के लिए आवश्यक है उससे बहुत ही कम दिमाग मेडिकल साइंस समझने के लिए जरूरी है। दिस इज नॉट माई अंडरस्टैंडिंग वॉज, आई केम टू द कंक्लूजन कि मेडिकल साइंस समझने के लिए अच्छा दिमाग लगता है, नो डाउट, लेकिन भगवान का विषय समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। वो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, हमारा उनका रिश्ता क्या है, हम लोग क्यों यहाँ फंसे हुए हैं, क्या कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर आए हैं, क्यों उनके साथ में नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, उनके लोक का वर्णन क्या है, वहां कैसे पहुंचना है, ये बड़े गहन विषय हैं और ये केवल मनुष्य ही समझ सकता है। कुत्ता बिल्ली को प्रवचन देंगे तो नहीं समझेंगे, वो देखेंगे खाली कभी हमारा भोजन हमारे ऊपर फेंका जाएगा और कब खाएंगे उसको, इसके लिए बैठते रहेंगे लेकिन उनको प्रवचन नहीं कर सकते आत्मा के विषय में। केवल मनुष्य को, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई कुछ भी हो, केवल मनुष्य के ही लिए ये विषय है भगवान को समझने का, और सबसे बड़ी प्राप्ति है। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात अगर हम भगवान का विषय में जानकारी नहीं करेंगे तो ये जीवन पूरा व्यर्थ है। हम लोग कैसा व्यर्थ है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, अमीर बना, बंगला बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, इतना सारा इन्फ्लुएंस है, उसका प्रभाव है लोगों के ऊपर, इतना बड़ा आदमी है, सब उसको सलाम करते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है, हाँ इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, कितना बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये कोई कम बड़ी बात है क्या? लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर भगवान के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त किया तो ये जीवन व्यर्थ होने के बराबर है। अरे इंद्र भी बन गया ना, इंद्र मतलब स्वर्ग लोक का भी राजा बन गया, तो भगवान को नहीं अगर समझ गया तो इंद्र का जीवन भी बर्बाद है। ब्रह्मा भी बन गया अगर, तो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मांड का पूरा, इतने लोकों का निर्माण किया, 7 स्वर्ग लोक, 1 पृथ्वी लोक, 6 नरक लोक, इतने देवताओं के बड़े बड़े लोक निर्माण किए, सब लोगों को जीवन दिया, शरीर दिया, पंछियों को दिया, कीटकों को दिया, पेड़ों को दिया, जानवरों को दिया, इंसान को दिया, इतना बड़ा काम करने के बाद भी अगर ब्रह्मदेव अगर भगवान को नहीं समझते हैं और भूल जाते हैं तो उनका भी जीवन व्यर्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जब उन्होंने भगवान के बछड़े चुराए ना, आपने कथा सुनी है भगवान की, वो भगवान ऐसे खेल रहे थे जमुना किनारे, और उसके पहले उन्होंने अगासुर का वध किया था, तो अगासुर का वध करने के बाद में सब जगह खबर फैल गई क्योंकि अगासुर ने सब देवताओं को परेशान कर दिया था, देवता लोग उनसे परेशान थे और डर भयभीत थे उनसे, तो ब्रह्मा को खबर पहुंची कि अरे कोई बालक ने, 7 साल के बालक में ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में अगासुर को मार दिया। अच्छा, इस अगासुर के भय से सारे देवता लोग छुपे हुए थे, उसको मार दिया 7 साल के बालक ने। और ऋषि मुनि ने कहा वही भगवान है, बालक बनकर लीला कर रहे हैं वहां पर। तो ब्रह्मदेव को भी यकीन नहीं आया, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, जो मुझे भयभीत कर सकता है उसको 7 साल का बालक कैसे मार सकता है। तो ब्रह्मा जी आए राजहंस पर बैठकर वृंदावन में और देखा कि सब ग्वालक खेल रहे हैं जमुना किनारे, तो इसकी कसौटी करने के लिए अपनी शक्ति से सब बालकों को और सब बछड़ों को चुरा लिया उन्होंने और गुफा में बंद कर दिया। देखे क्या करता है बालक 7 साल का, बालक ने क्या किया, सभी बालकों के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया, ही बिकेम ऑल द बॉयज, ही बिकेम ऑल द काफ्स, सब बछड़े से सब खुद बन गए, हुबेहू बन गए, आप जैसे बन गए, इनके जैसे बन गए, सबके जैसे बन गए, एवरीबडी। और ऐसे ही गीत गाते हुए थे घर चले गए, फिर लौट के आए खेलने के लिए, फिर चले गए। ब्रह्मा जी लौट के आए, देखा अरे तो वो फिर बैठ के खेल रहे हैं, क्या बात है, अभी तो मैंने छुपा के रखा था उनको, तो गुफा में गए तो वहां पर देखा तो वहां पर भी सो रहे हैं, क्योंकि उनको हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके सुला दिया था। उधर भी बछड़े सो रहे हैं, उधर भी ग्वाल बाल सो रहे हैं, और इधर भी खेल रहे हैं जमुना किनारे में, वैसे के वैसे ही है सीन, कोई बदली नहीं है, वो भी वैसे ही है, उनके साथ ग्वाल बाल भी वैसे ही है। तो समझ गए कि जितना दिमाग मुझे लगता है मेरे पास है उससे कई गुना ज्यादा दिमाग इनके पास में है। मैं सोच रहा था कि मैं इनको भ्रमित कर दूंगा, इनके बालकों को छीन कर पूरा बिविल्डर कर दूंगा, कंफ्यूज कर दूंगा, लेकिन लग रहा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, ऐसा उनको लगा। तो उनके कंफ्यूजन में, उनके भ्रम में और भर डालने के लिए भगवान ने क्या किया, अचानक वो सभी ग्वाल बाल, सभी बछड़े, सब विष्णु बन गए उनके आंखों के सामने। अभी देखकर वो सोच ही रहे ऐसे कैसे हो रहा है, तो अचानक उनके सामने जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी बछड़े वो खुद बने थे ना, वो सब विष्णु स्वरूप बन गए, चतुर्भुज। और यहां आश्चर्य समाप्त नहीं हुआ, इसके आगे हर एक विष्णु के पास 33 करोड़ देवताओं का एक सेट पैदा हो गया और वो उस विष्णु की वो पूजा करने लगा। तो खुद ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, इंद्र भी थे, चंद्र, वायु, वरुण, सब लोग थे उसके अंदर। एक एक विष्णु के पास एक एक सेट, ऐसे अनंत विष्णु सब जगह विराजमान है और उनके पास में अनंत ऐसे सेट उनकी आराधना, स्तुति, पूजा, आरती उतार रहे हैं। और आगे जाकर क्या किया भगवान ने, सब विष्णु गायब हो गए और केवल अकेले बालक खड़े हैं हाथ में ऐसे दही और चावल लेके। अरे कहां गए मेरे बालक, अभी तो खेल रहे थे मेरे साथ, कहां गए? ऐसे ही भ्रम में वो बालक खड़ा है। तब ब्रह्मा जी पूरे चितपट हो गए, दंडवत प्रणाम किया, माफ करना आप ही भगवान हो, मैंने आपका परिचय नहीं समझा ठीक से, पहचान नहीं पाया मैं, पर आपकी कसौटी किया मैंने, आपका ही बालक हूं, आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है, तभी मैं भ्रमित हो गया था, तभी नाभि को सब ढूंढ रहा था मैं, कहां से आया, क्या हुआ, तभी आपने मेरे हृदय में मुझे ज्ञान दिया था और आदेश भी दिया था कि आपको निर्माण करना है, तो वो आपको मैं पहचान नहीं पाया कि आप बालक रूप में लीला कर रहे हो। उन्होंने वहां पर एक बढ़िया लाइन बताया है, क्योंकि जब गलती किया ना पहले, इनकी लीला चल रही तो उनको चुरा लिया और लीला को भंग कर दिया उन्होंने, फिर लौटा दिया वापस, तो लौटा दिया तो फिर पश्चाताप हुआ ना, अरे किसकी परीक्षा किया हमने, कोई देवता की परीक्षा नहीं किया जिसको मैंने निर्माण किया है, जिसने मुझे निर्माण किया उसका परीक्षा करने का प्रयास किया मैं, कितना बड़ा अपराध किया, अपने टीचर का परीक्षा करेंगे लगेंगे तो कैसा होगा। तो फिर प्रार्थना किया, माफी मांगी, फिर प्रार्थना में एक लाइन बताया उन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन ये बताया उन्होंने कि जितना मैं समझता हूं कि मैं आपको समझता हूं, उतना मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं समझता हूं। तो समझ में आया, द मोर आई थिंक आई नो यू, आई कम टू नो कि आई डोंट नो यू। जितना मैं अनुभूति करता हूं आपके बारे में, आपके विषय में कुछ समझता हूं नई बात, उतना मुझे समझ में आता है कि आप अनंत हो और आपको समझना मेरे दिमाग में नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी कौन है ये? ब्रह्मा जी सृष्टि का पहले जीव है, सबसे पहले जीव, और सबसे टॉप क्वालिटी का ब्रेन उनको भगवान ने दिया, एक नहीं चार दिया है, चार चार मुख है ना उनके, उसके अंदर चार दिमाग है, और उस दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है कि पूरा सृष्टि का निर्माण कर सकते हो, इतना नॉलेज देकर रखा है। जितनी 84 लक्ष योनियां हैं, जितने हम लोग सब जीव हैं, वो सबका निर्माण वो करते हैं, और कोई भी एक योनि में, एक जाति में कोई भी जीव एक समान नहीं रहता है। देखो यहां पर कितनी औरतें बैठी हैं, सब अलग अलग दिखती हैं, है ना, और लोग आएंगे और भी अलग दिखेंगे, जुड़वा भाई भी आएगा तो अलग दिखेंगे। इतनी निर्माण में खूबी है उनके, सच अ फाइन क्रिएशन, इसके अंदर कोई समानता ही नहीं है। जितने जीव बनेंगे उतने अलग ही बनेंगे, इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनका उन्होंने बनाया, इतना बड़ा दिमाग भगवान ने उनको दिया है। उसके बाद में फिर इंद्र वंद्र सब उसके बाद में बने हुए, तो वो कहते हैं ये बात, ये उनकी अनुभूति है, कोई एरा गेरा कीटक नहीं बोल रहे हैं। जिसको सबसे पहले जीव भगवान के है, वो ये ब्रह्मांड के बोलते ना हम लोग, फर्स्ट लेडी द मेयर और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी मेयर, वैसे वो फर्स्ट सिटीजन है पूरे ब्रह्मांड की, फर्स्ट पर्सनैलिटी। वो कह रहे हैं कि आपको समझना मेरे बस की बात नहीं, कितनी बड़ी बात है, तो कौन कह रहा है, सबसे बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति बोल रहा है। तो वही व्यक्ति एक बार वैकुंठ में द्वारका में भगवान को मिलने गए, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के अधिकारी है ना, तो बॉस को रिपोर्ट भी करना पड़ता है ना, कभी कभी सलाम भी करना पड़ता है, सर थैंक यू वेरी मच, एनीथिंग फॉर अस, कुछ काम है हमारे लिए, आदेश है कुछ? तो गए द्वारका में एक बार, द्वारका गेट पर उनको रोका गया। तो उनको उन्होंने पूछा कि क्या बात है, बोले वो उनको कहना ब्रह्मा जी आए। अच्छा ठीक है, द्वारपाल अंदर गए, साहब को बोला विष्णु भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को कि कोई आया है चार मुख वाले, बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा हूं। तो भगवान ने उनको एक प्रश्न बोलकर भेजा वापस, उनको पूछना कौन से ब्रह्मा हो आप। तो लौट के आया द्वारपाल और ब्रह्मा जी को बोला वो हमारे ठाकुर जी भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। बोले इसका मतलब क्या होता है, और भी के ब्रह्मा है क्या, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूं, हमारे ब्रह्मांड में तो एक ही ब्रह्मा है। बोला अच्छा ठीक है मैं बता देता हूं, बता दिया। उतने में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने स्मरण किया और सभी ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मा हैं सबको बुला लिया स्मरण से। हाँ, कोई घुड़सवार नहीं भेजा, कोई पुकारा नहीं किसी को, हृदय से खाली आह्वान किया। और आप जानते हैं भगवान के अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो खाली एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसा बड़ा क्रिएशन है उनका। जैसे एक सरसों के गोनी, बोली बोली बोलते आप क्या बोलते हैं उसको, बड़ा होता है ना गोनी, वो अगर आप बोलेंगे इसमें दाने कितने हैं सरसों के गिनो, आप शाम तक गिन के बता दो। कोई नहीं गिन सकता है उसको, कितने भी आदमी लगाओगे तभी वो परेशान हो जाएंगे, कहां से गिनना है वो समझ में नहीं आएगा उनको। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान के निर्माण में, सृजन में, सृष्टि में, जितने ब्रह्मांड है सरसों के दाने की तरह, उसके अंदर हर एक विष्णु बसे हुए हैं, उसके हर एक विष्णु के अंदर से नाभि से कमल निकल रहा है और हर एक कमल में एक एक ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है और वो ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड में सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वहां के सब सृष्टि होते ना उसका निर्माण कर रहे हैं, विभागीय सृष्टि बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर जो सृष्टि है उसका निर्माण वो कर रहे हैं। तो आ गए सब ब्रह्मा जी, तो ये ब्रह्मा जी आए अंदर, देखा तो क्या, अरे मैं तो चार मुख वाला हूं, यहां पर तो सौ मुख वाले भी है, हजार मुख वाले भी है, लाख मुख वाले भी है, दस लाख मुख वाले भी है, एक करोड़ मुख वाले भी है, ऐसे अनेक ब्रह्मा जी जिनके कंधे पर इतने सारे सर थे और वो बहुत शोभायमान लग रहे थे, ऐसा नहीं कि भाई कोई बीमार लगेगा ना कि दो चार सर लगे तो कितने खराब दिखेगा, ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग ने केवल एक सर का आदमी देखा है, चार का भी देखा नहीं है, ब्रह्मा जी ने भी खुद देखा नहीं है चार के ऊपर वाला, एक तो खुद को देखा है बाद में किसी को देखा नहीं है, तो परेशान हो गए देख के, ये क्या चीज है। और सब लोग जितने ब्रह्मा है इतने इतने उनके सिर है, वो सब लोग हाथ जोड़कर स्तुति गायन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं, भगवान क्या आदेश है हमारे लिए। बोले कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने को बुलाया था उनको, इस ब्रह्मा को दिखाना था कि तुम अकेले नहीं हो। और जब उनने देखा कि इतने सारे ब्रह्मा, इतने सारे सर वाले, तो उसको अपने आप को वो कीटक समान अनुभूति हुई कि मैं तो कीटक के समान भी नहीं, इनके इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं, जैसे कोई गली का क्रिकेट खेलने वाला आदमी अगर टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में जाएगा तो देखा अरे कितने बड़े बड़े प्लेयर है यहाँ पर, मैं तो गली का खेलने वाला हूँ, पूरा अहंकार चूर चूर हो जाएगा उसका। वैसे ब्रह्मा जी नम्र हो गए, दंडवत की हाँ भाई आपने पूछा था कौन सा ब्रह्मा हूं, मैं ये चार दिशा वाला ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, अभी मेरी समझ में आके प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहिए था, क्योंकि इस ब्रह्मांड में चार दिशा है ना प्रमुख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसलिए यहां पर चार दिशा में चार मुख देखते रहते हैं उनके, और इसलिए चार मुख वाले ब्रह्मा है। ऐसे भी कोई ब्रह्मांड है जिसमें दस दिशाएं होती है, बीस दिशाएं होती है, हजार दिशाएं होती है, लाख दिशा होती है, हमको समझ में नहीं आ सकता, हमारा दिमाग उसके लिए फिट नहीं है समझने के लिए, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि वो ब्रह्मा भी स्वयं भ्रमित है, भगवान को, भगवान के विषय में उनको जानकारी पूरी नहीं है ऐसा उनको लग रहा है, वो ब्रह्मा जी यहां पर निर्माण करते हैं, सृष्टि निर्माण करते हैं, सब जीवों को शरीर देते हैं, जीवन दान देते हैं, उनका जीवन चलाने के लिए व्यवस्था भी करते हैं, मतलब वायु की, जल की, उसके लिए जीव निर्माण करते हैं, जल के लिए वरुण को जन्म देते हैं, इंद्र को जन्म देते हैं, वायुदेव को जन्म देते हैं, अग्निदेव को जन्म देते हैं, चंद्रदेव, सूर्यदेव, प्रकाश के लिए, दिन रात के लिए जन्म देते हैं, सबके निर्माण करता हुआ जितने भी योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं, सर्प योनियां हैं, मनुष्य योनियां हैं, जानवर योनियां हैं, पंछी योनियां हैं, पेड़ योनियां हैं, सबको जन्म देते हैं और सब जीवों को उनके अनुकूल शरीर भी बना के दे देते हैं, उनका प्रोग्राम फिट कर देते हैं कि इनको कितना साल जीना है, कहाँ जीना है, कौन से देश में, कौन सी भाषा में, कौन सी जाति में, कौन से नगर में, कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्या किस प्रकार के हैं, कितना साल जिएंगे, सब कुछ प्रोग्राम फिट करके उनको जीवन दान दे देते हैं। और जीव क्या सोचता है, इतना सुंदर शरीर मिला है, उसे भोग करना चाहिए, लेकिन वो जानता नहीं है कि जितना भोग वो करता है उतना वो आसक्त बन जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं दुख करते हैं, वो स्वयं चाहते हैं कि मैं इतना साल जी रहा हूं। ब्रह्मा की आयु कितनी है मुझे पता नहीं, हिंदी में कैसे बताना उसको, 3,011,000,000,000 ईयर्स, उसमें कितने जीरो होते हैं 9 जीरो होते हैं, 311 एंड 9 जीरोज, इतनी आयु ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा का जन्म और ब्रह्मांड का नाश जब होता है तब तक ब्रह्मा जी जीते हैं, मतलब ब्रह्मा जी इज फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बाकी सब लोग बीच में समाप्त होते हैं, देवता जन्मते हैं, मरते हैं, फिर नए देवता आते हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन ब्रह्मा जी शुरू से लेकर एंड तक रहते हैं। और जब ये ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी की फिर वापस भगवान के शरीर में चले जाते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं। और ये जो 311 और 90 ये जो कालावधि है, टाइम पीरियड है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु की केवल एक सांस है, ओनली वन ब्रेथ, वो भी नॉट फुल ब्रेथ। ब्रेथ कैसे बनती है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, एक श्वास और एक उच्छ्वास, इससे एक ब्रेथ बनती है। ये केवल उच्छ्वास है, मतलब छोड़ा हुआ श्वास, जब वो लेते हैं तो प्रलय होता है, फिर जब छोड़ने लगते हैं तो वापस निर्माण होता है, उनके उच्छ्वास के साथ में पूरे विश्व का निर्माण होता है। क्यों बनाते हो इतना विश्व, क्या जरूरत है बनाने की, बनाना बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना। हाँ, तो मराठी में एक हमारे अच्छा भजन है, उसमें कहते हैं कि विठला तू वेड़ा कुंभार, वो बनाते हो तोड़ते हो, बनाते हो तोड़ते हो, वो हमारा कुमार जो होता है वो खाली बनाता है और बेचता है और लोग लेते हैं और पानी भर देते हैं, तो तोड़ता नहीं, लेकिन तू ऐसा कुमार है जो बनाता भी है तोड़ता भी है, फिर बनाता है फिर तोड़ता है क्यों ऐसा करते हो भगवान आप? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं जीव, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जीव की बात कर रहा हूं, सब जीव जो है वो एक समान है, हम मनुष्य के शरीर में है, वो जानवर के, कीटक के, पंछी के, पेड़ के शरीर में है, लेकिन जीव की जो क्वालिटी है वो सब सेम है, जो पेड़ के अंदर है, जो पंछी के अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो सब सच्चिदानंद आत्मा है। लेकिन ऐसे अनंत आत्माओं में से कुछ आत्मा जो है वो भगवान से कहते हैं कि हम आपको नहीं मानते, हमें आपके अधिकार में, नियंत्रण में, शासन में नहीं रहना है, हम अलग जीना चाहते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, इसमें आपका अधिकार ना हो, मेरा अधिकार, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। मतलब ठीक है, मर्जी आपके, मैं आपके मर्जी के खिलाफ नहीं हूं, आपके लिए मैंने अलग जगह बनाई है जहां पर आप मुझे भूल कर रह सकते हो, ये सोचकर रह सकते हो कि आप ही नियंत्रक हो, जाओ, फिर ये सब बनाना बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना का सिलसिला शुरू होता है। भगवान के धाम में ये नहीं होता है, भगवान का धाम चिरंतन है, शाश्वत है, वहां पर कोई ऐसा बनाना बिगाड़ना काम नहीं है। अरे वहां पर तो जन्म मृत्यु भी नहीं है, जो रहते हैं सब लोग 16 साल के नव यौवन अवस्था में रहते हैं, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है, सब लोग आराम से जीते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग राय नहीं है, हाँ, कोई मलमूत्र नहीं है वहां पर शरीर के अंदर, कोई गटर नहीं है, नाला नहीं है, टॉयलेट नहीं है, सुगंधी सुगंध निकलती है सब जगह पर, कोई बदबू नहीं है, ऐसा उनका दिव्य धाम है जहां पर सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है प्रकाश बनाने के लिए, यहां पर सूरज होगा तो रोशनी है, फिर अमावस्या होगी तो चंद्र भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, अंधेरा हो जाता है, वहां पर ऐसा नहीं है, न शशांक को न पावक, ना सूर्य की जरूरत है, न चंद्र की जरूरत है, वो स्वयं प्रकाशित है मेरा धाम, भगवान कहते हैं। लेकिन ये जगत जो है इसको भौतिक जगत कहते हैं, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इसका प्रधान लक्षण है, ये मेन सिम्टम ऑफ लाइफ ओवर हियर इज बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, ये चार प्रधान बातें यहाँ पर होती है जो हमको पसंद नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमको स्वीकार करना ही पड़ता है उसका। तो जो जीव कहते हैं कि हमको नहीं रहना है आपके पास, हम चाहते हैं कि हम अपने आप के मालिक बने, सोचते हैं ना हम लोग ऐसे हमेशा, नहीं नहीं मुझे मम्मी पापा के पास नहीं रहना, अभी मुझे अपना अपना रहना है, बस बहुत हो गया, अभी बहुत दिन सब सुन लिया उनका मैंने, ये मत करो ये मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, इतने जल्दी लौट के आओ, 7 बजे बाद बाहर मत रहो, हाँ इधर मत जाओ, रात को मत कहीं रहो, दिन में आ जाओ वापस लौट के, ये सब मुझे पसंद नहीं है, अभी मैं अपने अपने रहूंगा, अभी घर पे नहीं रहूंगा। तो पापा क्या बोलते, नहीं बेटा तुम्हारा जो कल्याण है मेरे ही पास है, ये सब तुम्हारा ही है, बस मेरे कुछ घर के नियम है उसको पालन करते हो, आराम से रहो, सब प्रॉपर्टी आपके ही है, जब मैं जाऊंगा चला जाऊंगा अपने आप सब आपके नाम पे हो जाएगा। नहीं नहीं फिर भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता आपका रुपया ले लूं, मैं अपना अपना कमाऊंगा, बस आपने पढ़ा दिया ना बस हो गया, अभी जाऊंगा नौकरी करूंगा, अपना अपना घर बनाऊंगा, अपनी मर्जी से रहूंगा, आपका खिटखिट नहीं रहेगा उसके अंदर। ये कुछ डायलॉग आपको सुने पहचान के लगते क्या? हाँ कॉमन डायलॉग्स है ये, सब घर में चलते रहते हैं, जब कोई लड़का 16, 13, 14 साल का हो जाता है तो फिर ये डायलॉग चालू हो जाते हैं, क्या हमेशा ऐसे मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत खाओ, बाहर मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, क्या है ये सब, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। फिर लड़कियां भी हॉस्टल में रहती है, लड़के भी हॉस्टल में रहते हैं, हाँ फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, पापा आई एम वेरी सॉरी पापा, हमने कुछ सोचा था लेकिन हुआ कुछ और ही, हकीकत तो कोई और ही है, दुनिया की सच्चाई कुछ और ही है, सॉरी पापा। अरे पापा कहते, अरे आ जाओ बेटा आ जाओ, मैं तो इंतजार कर रहा था आपका, जब से गए हो तब से मैंने ठीक से भोजन भी नहीं किया, रात को ठीक से एक बार भी सोया नहीं मैं, आप जब से गए हो आपकी याद में आप कहाँ रहते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ ठोकरे खाते होंगे, क्या क्या नौकरी करते होंगे पता नहीं, इस विचार में मुझे ना भूख खाना अच्छा लगा ना नींद ठीक से आई मुझे, आज मैं खुश हूं कि आप लौट के आए हो, हाँ चलो एक फेस्टिवल बनाते हैं, पार्टी देते हैं, आप आ गए इसलिए अच्छे से नहा धो लो, फर्स्ट क्लास बाल बना लो, तेल वेल लगा के अच्छे चमकदार बन जाओ, बहुत परेशान दिखते हो, भोजन नहीं किया बहुत दिन से, काले हो गए हो, बहुत सारा दर दर के ठुकरे खा के, कोई बात नहीं अभी आप जाओ अच्छी तरह स्नान करो, फर्स्ट क्लास अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, फिर पार्टी बनाते सबके लिए, तो खुशियां मनाते कि बच्चा लौट के आया, ऐसा होता है ना बहुत घरों में होता है, ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, हम सब लोग उनको छोड़कर यहां पर आए हैं, हम अपना अपना जीवन जिएंगे, आई विल लिव माई ओन लाइफ, आई डोंट वॉन्ट गॉड इन बिटवीन टू टेल मी वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, आई वॉन्ट टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। लेकिन यहां पर आने के बाद देखते क्या है, अरे जन्म के बाद भी तकलीफ हो रही है, जन्म में भी परेशानी है, हाँ सब लोग पेड़े बांटते हैं लेकिन वो बच्चा रोता है, हाँ कोई हंसता हुआ है क्या, अरे इतने छोटे से मार्ग से उसको निकलना है, इतना परेशानी है, हाँ रो रहा है बेचारा, वो उसको इतनी परेशानी है, फिर बड़ा हो गया तो खांसी सर्दी जुलाब, हाँ बीमारी आ रही है, आए दिन बीमारी है, बच्चों के स्पेशलिस्ट भी है, एडोलेसेंट की भी है, और लेडीज के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, और फिजिशियन भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, ENT भी होता है, कितने विषय की बीमारियां हैं, उतने डॉक्टर बने हुए हैं सब जगह पे, पर कोई समय नहीं ऐसा कि भाई बीमार नहीं, अभी इस समय तो बिल्कुल बीमारी से फ्री है, कोई बीमारी है ही नहीं, तो जवानी में भी सर्दी होती है, निमोनिया होता है, क्या क्या नहीं होता है, और आजकल जवानी में क्या होता है, डिप्रेशन, हाँ सिज़ोफ्रेनिया, कितनी बीमारी है आजकल, तो साइकेट्रिस्ट लोगों का तो इतना धंधा बढ़ गया है, तो पूछो मत आप, सबसे अधिक दवाई मालूम है किसकी बिकती है, साइकेट्रिस्ट लोगों की, और अधिकतर उनके पेशेंट जो होते हैं ना वो 10 से 15 साल की उम्र में होते हैं, ये सच्चाई है, इतनी सारी परेशानियां हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं जो बीमारी से फ्री है, और अगर आप समझते हम जवान है तो निश्चित रूप से एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, 40 आएगा फिर 50 आएगा फिर 60 आएगा, फिर 60 के साथ में डंडा भी आएगा, चश्मा भी आएगा, मोतियाबिंद भी आएगा, सब आएगा, और आप हमारे हॉस्पिटल में आइए और लास्ट स्टेज में जो होते ना मरीज, उनका आके मिलिए, मैडम प्रभु जी माता जी आपको क्या लगता है अभी, मेरा पूरा जीवन बेकार गया, मेरा व्यर्थ गया, ऐसा बोलेंगे 99.99 पेशेंट विल टेल यू दिस, कुछ लाइफ में कुछ दम नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सबके लिए मेहनत किया, बच्चों के लिए किया, इसके लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, कोई किसी का नहीं है। अभी मैं इतना परेशान हूं, कोई नहीं आ रहा है मुझे देखने के लिए। सब सोच रहे हैं कब जाएगा। डॉक्टर को कान में पूछते हैं, सर कितने दिन बाकी है, कितना समय रहेगा इनका। आपको लगेगा कि मैं ऐसे बता रहा हूं, मैंने मेरी आंखों से और कानों से देखा है ये सब चीज। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं ना, मैं बरथाना में था, वहां पर एक पेशेंट थे, बहुत बीमार थे, तो एकदम फाइनल स्टेज में थे। तो वो बरसाने में वृंदावन में थे, तो मैंने उनको बोला कि आपका कोई रिश्तेदार है क्या, फोन किया मैंने उनको, अरे बाबा जल्दी आ जाओ, वो दिल्ली में कहीं लड़का था उसका। पहले पूछता है, सर अर्जेंट है क्या, अभी तुरंत आना पड़ेगा क्या? मैंने बोला देखो ऐसा है कि आपके पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, उनको हार्ट अटैक आ गया है, हो सकता है वो गुजर भी सकते हैं, बाद में आप पछताओगे, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, आता हूँ। आ गए गाड़ी से, आ गए, बोला हाँ छुट्टी लेके आया। ठीक है, पिताजी बहुत गंभीर अवस्था में थे, तो देखा थोड़ा देखा वगैरह, फिर मुझे बाहर लेके गए। तो डॉक्टर साहब कितना दिन बाकी है, मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ आपको मैं, मतलब हाउ मच टाइम इज देयर। बोले क्यों पूछ रहे हो? नहीं लेकिन वो छुट्टी का अप्लाई करना पड़ेगा ना कंपनी में, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा इतना तो गंभीर नहीं है, मतलब तो ठीक है मैं जाता हूँ, अभी अगले दो दिन के बाद लौट के आता हूँ। और बाय द वे आपको क्या बताऊं, ये जो पूछ रहा था लड़का कि कितने दिन बाकी है, ये पिताजी भी सुन रहे हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे पिताजियों को और माताजियों को सुनना पड़ता है, बहू के मुख से, पुत्र के मुख से, कब जाएंगे ये पता नहीं, बहुत दिन हो गए, कितने खर्चे हो रहे हैं, सर्वेंट का खर्चा हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। तो हर एक आदमी जो सो कॉल्ड खुशी की जिंदगी जी चुका है, कल तो अच्छे पद पे था, गवर्नमेंट के ऑफिसर में था, बहुत सारा अच्छा पोजीशन था, सेविंग भी अच्छा किया था, एक घर भी अच्छा बना लिया, गांव में भी है, इधर भी है, जमीन भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, दो बच्चे भी, एक अमेरिका में, एक इंग्लैंड में पढ़ता है, एक इंजीनियर है, सबकी शादी हो चुकी है, मतलब सो कॉल्ड नाइस फैमिली। लेकिन एंड में वो बोल रहे कोई किसी का नहीं, कोई किसी को पड़ी नहीं, नोबडी केयर्स। अरे मेरे पांच पांच बच्चे हैं लेकिन सब लोग झगड़ रहे हैं, कौन मम्मी को रखेगा, अभी तू क्यों रखता नहीं है, मैं तो बिजी हूं, अभी मेरे घर में नया नया बच्चा पोता हुआ है, तो अभी तू रख ले उसको, मतलब मेरे पास तो एक बनने से रह रही है, अभी तू लेके जा उसको, पता है कितना खर्चा होता है, सबको शेयर करना चाहिए। फिर मम्मी जो है ना वो नंबर लगाती है, पहले वाले के पहले पास जाऊं कि थर्ड वाले के पास जाऊं, फोर्थ वाले के पास जाऊं कि सिक्स वाले के पास जाऊं। तो कहते हैं क्या फायदा है, पांच बच्चे हैं, इतना मेहनत करके उनको बड़ा किया, एजुकेशन दिया, सेटल कर दिया, सबके लिए घर बना के दिया, ये करके दिया, मेहनत करके दिया, अब मैं ऐसा पड़ा हूं तो गिनती कर रहे हैं कब मरेंगे। यही जीवन की सच्चाई है, हम लोग चाहे मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप सोचते होंगे कि नहीं नहीं मेरे घर पे ऐसा नहीं है, तो मुझे बोलते होंगे अपनी कथा में, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। लेकिन बाय द वे सब लोगों को कभी ना कभी इस भावना का अनुभव करना पड़ता है, बहुत दुखद भावना है, और यही जीवन की सच्चाई है। और ये किसकी कीमत चुका रहे हम, उनको छोड़कर यहां पर आए इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। नहीं नहीं उनको छोड़ के बहुत मजा करेंगे, यहां पर आनंद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, क्या जरूरत है भगवान की हमको, अपने बलबूते पर मेहनत करेंगे, दिमाग चलाएंगे अपना, क्या जरूरत है भगवान की, हम लोग अपना खाना कमाएंगे, अपना भोजन करेंगे, अपना घर बनाएंगे, सब परिवार पालेंगे, अच्छी तरह रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ होने पर एक ऐसी बात है जिसका नाम है मृत्यु, इसका सामना सबको करना पड़ता है। और वो जब पास में आने लगता है सब लोग डरने लगते हैं, असहाय हो जाते हैं शरीर से और मन से। जो लोग दौड़ लगाते थे अभी वो डंडा लेके भी पकड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। मेरी मम्मी मेरे घर पे हैं, 85 इयर्स की है, चल भी नहीं सकती है। मैंने उसको युद्ध के फोटो देखे हैं, बहुत सुंदर थी वो, बहुत ही सुंदर, लंबे इतने तक बाल थे। और हमारे घर में सात हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन अभी वो चल भी सकती नहीं, देख भी सकती नहीं, उठ भी सकती नहीं। कितने भी अगर प्रेमी बच्चे भी होंगे तो भी शरीर का तो दर्द है, उसको क्या करेंगे, वो खुद कह रहे हैं भगवान जल्दी ले लो मुझे। लेकिन ऐसे बोलने थोड़ी होता है, जब समय बना है तभी जाना होता है, कोई उसको ना पोस्टपोन कर सकते ना प्रीपोन कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रीपोन हो जाए वो, कुछ सोचते नहीं अभी आना चाहिए, डर लगता है, अभी मुझे तैयार नहीं हूं मैं, प्लीज डोंट टेक मी माय लॉर्ड। लेकिन आगे भी नहीं होता है, पीछे भी नहीं होता है, और दर्द सबको होता है, डर सबको लगता है। ये सच्चाई है जीवन की, और हम सबको उसका सामना करने की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने ये जीवन स्वीकार कर लिया है। उनको छोड़कर यहां जीने की तमन्ना हमने की थी, उन्होंने कहा था चले जाओ हमारे धाम से, वो तो कह रहे मत जाओ पछताओगे, नहीं नहीं जाना है मुझे। अभी हमको ये अनुभूति हो रही है कि अरे ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना हमको लगता था, समय इतना बिगड़ता जा रहा है, इतना कष्ट होते जा रहा है, सुरक्षा कम होते जा रही है, हाँ एवरीबडी इज इनसिक्योर, एवरीबडी इज इन पेन, सो मच ऑफ क्राइम गोइंग ऑन, कितना गुनेह हो रहे हैं, इतना जीना खराब हो गया है। तो ऐसे जीवन में ये सोचना गलत है कि हम ऐश करेंगे, नहीं कर सकते हम। एवरीथिंग इज एट स्टेक, आपकी प्रॉपर्टी, सब लोगों की नजर उसके ऊपर है। अमीर बनना भी आसान नहीं है, अमीर बनते ही फोन आते हैं आपको हफ्ता वसूल करने के लिए, एक्सटॉर्शनिस्ट। इसलिए रिच बनना भी इतना आसान काम नहीं है, एक बार आप रिच बन गए तो उनकी लिस्ट में आपका नाम आ जाता है फिर आपको फोन आते हैं, फिर किडनैपिंग होता है, फिर दंड होता है, क्या क्या होते रहता है, इट्स नॉट इजी टू लिव। लेकिन भगवान का भजन करने से ये सब जंजाल से हम छूट सकते हैं, वी कैन बी फ्री फ्रॉम दिस ट्रबल्स। हमने भगवान को देखा किसने, हर चीज को थोड़ी देखते हैं हम लोग। आपने उरुग्वे देश को देखा है क्या, उरुग्वे आपने सुना है, उरुग्वे सुना भी हाँ, लेकिन फिर भी आप उरुग्वे पर विश्वास करते हो कि नहीं, आपने मैप पे कहीं देखा है डॉट है उरुग्वे नाम का ऐसा ही है वो, हर चीज देखने की जरूरत नहीं होती है, कुछ लोग सुन के भी हम समझ सकते हैं। आप में से कितने लोग अमेरिका गए हैं, कोई गए, एक आध दो गए होंगे, लेकिन जो नहीं गए वो अमेरिका का विश्वास रखते हैं ना कि अमेरिका है। यू डोंट हैव टू गो देयर टू बिलीव, हर चीज देखने से विश्वास करने से नहीं होती है, हम कुछ समझते भी है सुन के कि भाई है, ऐसा भी अस्पताल है जो हम गए नहीं वहां पर, लेकिन दिल्ली में है एम्स नाम का, हम वहां पर गए नहीं है लेकिन अभी जानते हैं कि है वहां पर। उसी तरह से भगवान को केवल देखने से ही अनुभव है ऐसा जरूर नहीं है, उनकी अनुभूति भी कर सकते हैं, उनके अस्तित्व की अनुभूति हम कर सकते हैं इसी जीवन में, यहीं बैठे हुए यहां रहते हुए भी कर सकते हैं, उसका मेथड है ना। अभी आप में से कोई बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, ना बन सकते हो आप, उसकी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो आपको पूरी करनी होगी, उसके क्राइटेरिया है कुछ, वो फुलफिल करेंगे तो आप अपने आप को एक दिन डॉक्टर बने हुए देख सकते हो। तो स्कूल का बच्चा बोलेगा पापा मुझे डॉक्टर बनना है, फिर बच्चा कोई बात नहीं, अभी आप टेंथ करो, फिर ट्वेल्थ करो, फिर आपको सीईटी देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका नंबर लगेगा, फिर आपको कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, फिर आप एडमिशन लेंगे, फिर आपको 6 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप MBBS बन सकते हो। लंबी प्रक्रिया है लेकिन है जरूर, और आप जरूर उसको अपना सकते हो और बन सकते हो। उसी तरह से उस प्रक्रिया पर विश्वास है आपको, इंजीनियर की प्रक्रिया पर विश्वास है, MBA की प्रक्रिया पर विश्वास है आपको, IAS बनने की प्रक्रिया पर आपको विश्वास है, और आप उतना वेट भी करने को तैयार हो, है ना। बच्चे को बोलते ना कि आप डिग्री करो पहले, फिर आपको IAS का एंट्रेंस देना है, फिर उसका ये क्लास करना होगा इतने साल के लिए, फिर एंट्रेंस होगा, फिर आपका अलग अलग जगह पर नंबर लगेगा। तो वैसे ही आपको भगवान की पहचान करनी है तो उसका भी प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है उसका भी, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कहते हैं कि हम दुनियादारी के जो अचीवमेंट्स है ना अपने, उसमें इतना सिस्टमैटिक है, उतने ही अनसिस्टमैटिक भगवान के विषय में। कैसा हमारा फॉर्मूला है, दादाजी ने कुछ कहा था, फिर दादी ने भी कुछ कहा था, फिर मम्मी ने कुछ कहा था, कुछ पापा ने कहा था, वो सब मिला के खिचड़ी बना लिया तो हमारा धार्मिक मार्ग हो गया, दिस इज माय रिलीजियस पाथवे। और लेकिन डॉक्टर बनना है तो फिर बराबर उसका एग्जामिनेशन, एंट्रेंस, किताब, क्लासेस, एग्जाम सेंटर, सब आएगा उसका, फी भरने का सब आएगा। लेकिन भगवान के विषय में वी आर मोस्ट अनसिस्टमैटिकली अनसिस्टमैटिक। लेकिन भगवान को भी जानने का एक साइंस है, और वो जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए ये मनुष्य का जीवन दिया है, क्योंकि वो जानने का और अमल करने का फैसिलिटी और किसी जीवन में नहीं दे। आपका तोता घर में जो पिंजरे में है वो नहीं कर सकता है, घर में कुत्ता रखा है वो नहीं कर सकता है, बिल्ली नहीं कर सकती है, चूहा नहीं कर सकता है, पंछी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये फॉर्मूला, ये प्रक्रिया हम समझ सकते हैं और उसको जीवन में उतार भी सकते हैं। ऐसा नहीं केवल समझ के आदमी करना कैसे पता नहीं है, करने के लिए सुविधा नहीं है हमारे पास, फैसिलिटी नहीं है। नहीं, करने की फैसिलिटी भगवान ने दी है और कर समझने का भी कैपेसिटी आपको दिया है, और इसी जीवन में आप उनको समझ सकते हो और मिल भी सकते हो। जैसे आप मुझे, मैं आपको बताया कि अरे आप तो पंजाबी हो, आप तो मनमोहन सिंह तो आपके जात के होंगे ना, आपके पंजाब के होंगे, तो आपको उनको मिलने का दिल नहीं करता है? हाँ, मिलने का दिल तो करता है, हमारे गांव से थे वो, लेकिन कैसे मिलना है उनको? मिलना चाहती हूँ मैं, तो उसका भी प्रोसेस है ना उनको मिलने का, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाके उनकी कभी कभी मुलाकात हो सकती है या शायद हो भी नहीं सकती। आप शायद सोचते रहेंगे और इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको जीवन भर उनको मिलना। एक प्रधानमंत्री, एक देश के लोगों, व्यक्ति को मिलना अगर इतना मुश्किल है, इतना प्रोसेस उसके अंदर है, तो अगर सृष्टि के रचयिता को, निर्माणकर्ता को मिलना है तो आसान होगा क्या? इनसे आसान होगा? एक्चुअली आंसर उसका यस है, जितना इनको मिलना मुश्किल है उससे बड़ी आसानी से उनको आप मिल सकते हो भगवान को, क्योंकि भगवान में अहम नहीं है। भगवान जो उनको चाहते हैं उनके लिए आसान बनकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है भगवान की। इस दुनिया में जितना आदमी बड़ा बनता है ना, उतना उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। अरे तो मैं लंगोटे यार था बचपन का, नहीं अभी नहीं मिल सकता है, अभी मैं तो IPS ऑफिसर बन गया हूँ, नाउ आई डोंट मीट यू, आई कांट मीट यू, ऐसा होता है ना। मेरे भी बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, हम लंगोटी यार थे, हम लोग गोटी खेलते थे उस साथ में, अभी वो मथुरा में IPS ऑफिसर बनके CMO CPO बनकर आ गया वो, तो कितने बार कोशिश किया लेकिन मुलाकात नहीं होती। लेकिन इन सब लोगों को जितने निर्माण किया है, अनंत ब्रह्मांडों को निर्माण किया है, उसको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, केवल उनका नाम पुकारेंगे तुरंत आपके जबान पे वो प्रकट हो जाएंगे, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपका दर्शन भी होगा उनका। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग कहते हैं कि भगवान का हमेशा हृदय में दर्शन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें जो है ना, नेत्र जो है, प्रेमांजन चुरित, प्रेम का अंजन लगाकर देखते हैं उनको, ये कीमत है उसकी और कुछ नहीं कीमत। इसी जीवन में, इसी जीवन कालावधि में, इसी जीवन के अंत होने के पहले उनका दर्शन हम कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। नहीं नहीं, हमको तो दुनियादारी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, अभी तो बहुत दिन बाकी है हमारा, बहुत काम बाकी है, भगवान कहते हैं कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब कुछ निपटा के आ जा, मैं वही बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं आपका, डोंट वरी, जब आपको लगे तब आ जाना, मैं वही बैठा हूं, हृदय में बैठे हूं आपके, वेट कर रहे हैं कब ये दुनियादारी समाप्त करके मेरी ओर मुड़ेगा और मुड़ के देखेगा। हाँ भाई, आप भी बैठे हो, आपके संग जाना है मुझे अभी, तब मैं तैयार हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। कितने दयालु भगवान है देखो, अगर हम कीड़े मकोड़े का जन्म लेते हैं ना, तो उसके भी हृदय में परमात्मा के रूप में जाकर बैठते हैं। टट्टी पेशाब के अंदर जो कीड़ा होता है ना, उसके हृदय के अंदर भी वो परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते वो, आप उनकी ओर देखते भी नहीं हो लेकिन फिर भी आपके साथ चल रहे हो। कब ये मेरी ओर मुड़के देखेगा और मैं अपने धाम में उसको ले जाऊंगा? ऐसा कोई साथी होता है क्या अपना जीवन में? पति पत्नी भी इतना प्रेम करते हैं लेकिन मृत्यु के झटके से अलग हो जाते हैं, कोई साथ आगे निभा नहीं सकता है, चाहते हुए भी निभा सकता नहीं, नहीं नहीं मैं आपके संग आऊंगी लेकिन जा नहीं सकते, और जाने के बाद रास्ते अलग हो जाते हैं। चलो कोई सी सती अर्पण करते थे पहले, सती भी गए पत्नी तो भी रास्ते अलग है उसके आगे, हाँ एक बार शरीर का बंधन छूट गया, रास्ते अलग अलग है सबके, कौन से लोक में कौन जाएगा नोबडी नोस। लेकिन एक साथी ऐसा है जो हर जन्म में, जन्म जन्मांतर में, अनंत जन्मों तक आपका साथ निभा रहा है, आप उसको छोड़कर आए हैं लेकिन वो आपके संग संग चल रहे हैं, वो है परमात्मा, वो श्री कृष्ण भगवान परमात्मा रूप में आपका साथ दे रहे हैं। और जिस क्षण हम कहते हैं कि इस दुनिया में कोई दम नहीं है, सब झूठ है, इसमें कोई आनंद नहीं है, जितना खोजो उतना नहीं मिलता है, अब मुझे आपकी जरूरत है, तुरंत आ जाते हैं, तुरंत आपको रास्ता दिखाते हैं, तुरंत संत को भेजते हैं, तुरंत भक्त को भेजते हैं, तुरंत आपको प्रेरणा देते हैं, मार्ग बताते हैं, और आपको उस रास्ते में डाकर छोड़ देते हैं, अभी चलो उनके साथ में तैयारी करो और चलते रहो आगे, प्रयत्न करते रहो, मैं आपको अंत में मिलूंगा, अंतिम गंतव्य स्थान में मिलूंगा आपको। कितने दयालु है देखो, जिसको आपने ठुकरा दिया है, जिसकी तरफ मुड़के भी देखा नहीं है, जो आपका साथ दे रहा है फिर भी उसकी तरफ मुड़के देखा नहीं है, वो तत्पर है आपके लिए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हम अपने पुत्र के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर दो तीन बार आपने उसको बुलाया, नहीं आऊंगा पप्पा, बोले जा तो भी जो करना है कर, मैं आपका मुंह दे देखना चाहता, मेरी अर्थी उठाने के लिए भी नहीं आना, इसको हाथ लगाने मत देना, ऐसा भी बोलते हैं। मेरे पापा ने कहा था कुछ लोगों के लिए, इन दोनों को, मेरी अर्थी को हाथ मत लगाने देना, मैं इतना नाराज हूं उनके ऊपर। हम लोग भी ऐसा बोल लेते ना कुछ देर बाद, कोशिश करने के बाद हम लोग जब हार जाते हैं और परेशान हो जाते हैं तो हम लोग ऐसा बोल लेते हैं कि बस हो गया, अभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट। लेकिन इतना सारा ठुकराने पर भी, ना देखने पर भी, छोड़ के आने पर भी, वो आपका साथ दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं आतुरता से, तत्परता से, ईगरली कि कब मुझे मुड़ के देखेगा और कब मैं उसको रास्ता दिखाकर मेरे धाम में ले जाऊंगा और कब उसके ऊपर खुशियां लुटाऊंगा। कितने हमारे दयालु भगवान है। देखो किसी भी कीमत पर हम लोग अच्छे से अच्छा बनेंगे ना, एकदम संत अवस्था में आएंगे तो भी ऐसा नहीं बन सकते। इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी दया नहीं कर सकते। तो दया के सागर है, वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं और हम लोग उनके मुंह मोड़ के खड़े हैं, उनके ऊपर विमुख होकर खड़े हैं। बोले कोई बात नहीं, ये मेरा नाम लो, केवल अभी और तपस्या मत करो, मैं जानता हूं तुम्हारे तपस्या करने की शक्ति नहीं है, ना घर छोड़ने की शक्ति है, ना संन्यास लेने की शक्ति है, ना कुछ लागत छोड़ने की शक्ति है, ना कुछ आसक्तियां छोड़ने की शक्ति है, मैं जानता हूं। कोई बात नहीं, अभी तुम जहां हो वही रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, परिवार के अंदर रहो, दुनियादारी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मेरा नाम लो बस, और मैं ज्यादा बड़ी अपेक्षा आपसे नहीं करता हूं। एकदम आसान कर दिया। तो पहले जमाने में 60,000 साल तपस्या कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, हाँ अभी ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, सोच भी सकते नहीं कि हम जंगल में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यज्ञ करो, मंदिरों की पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, दान पुण्य करो, बहुत मुश्किल है। बोले कोई बात नहीं, कलयुग में जन्म लिया है, कोई बात नहीं, कलेर नाम रूपे कृष्ण अवतार, मैं मेरे नाम के रूप में अवतार लेता हूं, मेरे नाम का जप करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हकीकत है, कोई भूल भुलैया नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, ये तो अपने ग्रंथ साहिब में लिखा है, केवल इसका स्मरण करके ही उस तक पहुंच सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, इतनी शक्ति है इस नाम के अंदर। नाम नाम अकारी निज सर्व शक्तिस, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, जितनी मेरी शक्तियां हैं, जितनी मेरे पास एनर्जी है, जितनी मेरी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, वो सब मैंने मेरे नाम के अंदर अर्पित कर दी है और मेरा स्वयं व्यक्तित्व तो मैंने उसमें अर्पण कर दिया है। इसलिए नाम और मैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है दोनों। मेरी अनुभूति आप केवल नाम पुकारने से कर सकते हो, जहां पर भी बैठे हो मुझे पुकारने से मेरे अस्तित्व का अनुभव कर सकते हो। इतनी बड़ी देन जो है ना कोई नहीं दे सकता है। इतना ठुकराने पर, इतना आज्ञा पालन न करने पर, छोड़ के आने पर, इतनी दया कोई कर सकता है क्या? क्योंकि उन्होंने किया है, क्योंकि वो दया के सागर है। हम सबको चाहते हैं, हम सब पर प्रेम करते हैं। उस दिन हमने सुना कुछ लास्ट हफ्ते के प्रवचन में कि लोगों को नाम का परिचय हो रहा है, आपको हुआ, हमको भी हुआ, सबको हो रहा है। कारण क्या है? बिकॉज गॉड लव्स यू, दैट इज वाई ही इज इंट्रोड्यूसिंग यू टू द होली नेम। क्योंकि भगवान आप पर प्रेम करते हैं, इसलिए अपने नाम को आपको परिचय करा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस नाम के माध्यम से आप उन तक पहुंचे। इसलिए वो भक्तों के माध्यम से सबको नाम की पहचान करके दे रहे हैं। कोई गोविंद कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई नरसिंह भगवान कह रहा है, कोई वामन कह रहा है, हाँ कोई अलग धर्मों में अल्लाह करके पुकार रहा है। लेकिन अगर उसको पुकार रहे हैं जो सबका पिता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, क्योंकि भगवान किसी भी जीव को ना क्रिश्चियन के रूप में देखता है, ना मुसलमान के रूप में देखता है, ना हिंदू के रूप में देखता है, ना ईसाई के रूप में देखता है, ना सिख के रूप में देखता है। ये सब तो हमने बनाया हुआ क्लासिफिकेशन है, उनके लिए तो केवल उनके प्रिय बालक है हम लोग, सब लोग ऑल आर चिल्ड्रेन। एक साउथ इंडिया में सेटल हो गया है, एक अमेरिका में सेटल हो गया है, लेकिन माँ कैसे देखती है? ये तो सब मेरे बेटे हैं, नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, अमेरिका में रहता है, ये तो चपरासी बना हुआ है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा माँ बोलती है कभी? पिताजी बोलते हैं उनके लिए तो केवल आप बालक हो। मैंने मेरी 75 साल की दादी को, मेरे 55 साल के उस समय पिताजी को ऐसे बात करते हुए देखा है जैसे कि छोटा बालक हो। अरे जल्दी उठो, अभी सोमवार हो तो क्या हुआ, जल्दी उठ जाओ, 8 बज गए अब तो सोते हो। ऐसे मैंने मेरी दादी को मेरे पिताजी से बात करते हुए देखा है। मेरे लिए मेरे पिताजी हैं वो, मैं सबसे लास्ट बेटा हूं उनका, इज माई फादर। लेकिन दादी के लिए तो बेटा है उनका वो, हो सकता है उनको 10 बच्चे हो गए होंगे, हु केयर्स, यू आर माई सन, गेट अप 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जैसे एक माँ और पिता अपने बच्चों को देखते हैं, वैसे ही पिताजी हम सबको देखते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये पंछी है, वो तो देखते ही सब मेरे बालक हैं। कोई पंछी के शरीर में बैठा हुआ है, कोई मनुष्य के, कोई कीड़े मकोड़े के, कोई पेड़ के, कोई जानवर के, लेकिन सब मेरे खोए हुए बालक है। ये मुझसे जुदा होकर यहाँ पर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इस सबको मैं चाहता हूं कि मेरे पास लौट के आए, इसलिए हमारे ठुकराने पर भी वो बार बार लौट के आते हैं, अवतार लेते हैं, अपने शास्त्र को भेजते हैं, अपने संतों को भेजते हैं, अपने नाम को दे देते हैं, लो भाई मेरा नाम ले लो, कितनी कृपा करते हैं। और इतना काफी नहीं तो खुद भी आ जाते हैं। एक युग में राम बन के आते हैं, एक युग में कृष्ण बन के आते हैं, एक युग में नरसिंह बन के आते हैं, एक युग में वामन बन के आते हैं और लीला करते हैं। बोलते हैं ये मेरी लीला जो वहां पर रोज चलती है, आपको यहाँ पर खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ अट्रैक्ट करने के लिए, आ जाओ मेरे धाम पे लौट के आओ, आ अब लौट के चले। हाँ मराठी में कहते हैं या चिमणानो परत फिरा रे, अरे जो पंछी होते हैं ना, चिड़िया होती है, दिन भर दूर दूर भटकती रहती है, लेकिन शाम होते ही लौट के अपने घर में चली जाती है। ऐसे कई गीत है हमारे मराठी में, कोई बात नहीं, कविता है, या चिमणानो परत फिरा रे, पुकार रहे माता कि लौट के आओ, भटक भटक के हो गया अभी आओ, और क्या भटकना है, अभी घर लौटने का समय हो गया है। तो हमारे परम पिता पुकार रहे हैं कि हर जन्म में अलग अलग रूप में अलग अलग शरीर धारण करके आपने सब चख लिया, अभी 84 लक्ष योनि में जाके घूम लिया आपने, अभी बस हो गया, अभी आ जाओ, और क्या देखना है, जन्म मृत्यु जरा वैसे तो देखना है, और क्या देखना है, कौन से जीवन में छूटा है ये बताओ। पंछी के जीवन में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जानवर के जीवन में भी वही, और मनुष्य जीवन में वही, कोई अलग नहीं है, खाली उलिया अलग है, बस प्रोसेस सेम है सबका, सबको आना है, सबको जाना है, और सब कुछ छोड़ के जाना है। कुछ यहाँ पर नहीं नहीं ये लेके जाऊंगा, ये तो मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, नहीं सॉरी सर छोड़ो इधर ही चलो, अरे ये तो शरीर मैंने इतना प्रेम किया, 70 साल इसमें रहा मैं, इसके द्वारा इतना भोग लिया, इतना आनंद लिया, नहीं नहीं छोड़ो इसको, इसको भी जला दो, तुम चलो आगे। कोई बोल सकता है क्या, नहीं नहीं मैंने इतना मेहनत किया है, देव मेरे बाजुओं को देखो कितने मेहनत किया है, इतना मसल मैंने इतना मेहनत से कमाया है, इसको भी छोड़ के जाना है क्या, नहीं सर सब छोड़ के जाना है, कुछ भी आपका नहीं है इसमें, कुछ आपका कह नहीं सकते आप, ना पकड़ के रख सकते हो, जो समझते हो आपका है सब आपको छोड़ के जाना है। केवल एक चीज आपके साथ में जा सकती है, वो ये है आपका भक्ति भाव। इस शरीर के माध्यम से जो भक्ति आपने अपनाई है, इस यंत्र के माध्यम से जो इसके लिए बनाया गया है, इस यंत्र के माध्यम से जो भी आपने हासिल किया है स्पिरिचुअल लेवल पे, हाँ आध्यात्मिक स्तर पर, वही आत्मा के साथ जाएगा। जो शरीर के स्तर पे कमाया है वो शरीर के साथ ही यहां पर नष्ट हो जाएगा या छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा के स्तर पर कमाई किया है वो आत्मा के साथ जाएगा। तो हमको देखना है कौन सी कमाई करनी है, विच विल कम विद अस, क्या हमारे साथ में आ सकता है, ये समझने के लिए तो जिंदगी है हमारी। और फिर समझने के बाद में वही करना है जो इस लेवल पे जो धन हमको हमारा इकट्ठा हो सकता है वो चालू करना है, क्योंकि वो हमारा रास्ता बदली कर सकता है, नरक की ओर से स्वर्ग की ओर से बदली होके वैकुंठ की ओर हमको ले जा सकता है, इसलिए इस धन में शक्ति है। मेरा भाई क्या बोलती है, खर्च न छूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस धन की व्याख्या क्या है, तो खर्च नहीं होता है कभी, मैंने आपको दिया तो आपके पास भी हो, मेरे पास भी हो, इतना उतना ही रहेगा, और इस धन को कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो चोर आया ताला तोड़ के आपका धन लेके गया, ये धन नहीं चोरी कर सकता है वो। और देने से ये दुनिया का धन जो है वो कम हो जाता है, और लेकिन ये धन जो है आध्यात्मिक धन भक्ति का धन जो है वो देने से बढ़ जाता है, वो रोज बढ़ता है, वो खत्म नहीं होता है। इतना बढ़िया धन अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना है उसको, और इसी जीवन में उसको ले सकते हो, और वो धन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे की यात्रा भी उसी धन से समृद्ध होगी, सुखमय होगी, और उस धन के द्वारा हम नीलमणि को खरीद सकते हैं। कौन है वो नीलमणि? श्री कृष्ण भगवान। वो नीलमणि उस धन से हम खरीद सकते हैं, और कोई दुनिया का धन नहीं है जिसको दिखाकर उसको खरीद सकते हैं। वो तो सब कहते हैं कि वो सब तुमने, मैंने तो दिया है तुमको सब कुछ, उस पर क्या गर्व करते हो, सब मेरा दिया हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा धन दो जिसका मैं भूखा हूं, जो मैं चाहता हूं तो तुम अपने हृदय से मुझे दे सकते हो, जो केवल तुम्हारा है, वो है प्रेम का धन और भक्ति का धन। उसको देखकर ललचाते हैं बहुत, जिसके पास वो धन है वो उसके हो जाते हैं। और बाकी लोग अपने धन, अपना प्रॉपर्टी का जो टिकट लेके आते हैं उसको ठुकरा देते हैं, हटो यहां से, तो सब मेरे दिया हुआ है और आपका तो है ही नहीं, ये ना आप उसको ले जा सकते हो। तो ये जीवन का जो उद्देश्य है इस पर विचार करना जरूरी है। चाहे कोई 20 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई बीच परिवार में है, कोई परिवार का कर्तव्य पूरा कर चुका है, कोई मृत्यु के पास में है, कोई अभी बहुत काम बाकी है उसका, किसी भी अवस्था में हम रहेंगे लेकिन इस रास्ते पे रहना है। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री देश के हो, सबको मरना है, सीना तान के चलते हैं लेकिन मृत्यु के बाद में फ्लैट होके जाते हैं, किसी के कंधे पे चले जाते हैं, है ना। यू मे वॉक वेरी विद ग्रेट प्राइड, छाती फुला के चल सकते हो आप गर्व से, लेकिन मृत्यु आपको फ्लैट कर देगी और किसी भी कंधे पे आपको जाना होगा शमशान घाट तक। इस सत्य को जानता जो व्यक्ति है ना, वही बुद्धिमान कहलाता है। फिर वो गर्व नहीं करता है, वो जानता है कि कुछ है ही नहीं मेरा इसके अंदर, जो मेरा मैं मानता हूं उनका दिया हुआ है, और उनका नाम का धन मैं लेता हूं तो मैं उनका हो सकता हूं बस। इसलिए आप राम का नाम लो या कृष्ण का लो या अल्लाह को प्रेम से पुकारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन श्रद्धा से पुकारो। वो सुनने के लिए व्याकुल बैठे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं 9 to 5 सुनूंगा, बाद में नहीं पुकारना, प्लीज टाइम नहीं मेरे पास, बहुत बिजी रहता हूं मैं। वो डॉक्टर कैसे बोलते हैं ना, 9 to 11 विद अपॉइंटमेंट ओनली, घर पे आके नहीं मिलना है मुझे रात को 12 बजे। इमरजेंसी में आऊंगा लेकिन रोज ऐसा आएंगे 11-12 बजे, मैं खाना खा रहा हूँ, बोल रहे हैं खांसी हो रही है, बोले अभी टाइमिंग नहीं मेरा, उधर आना 11 बजे सुबह, कल मिलना मुझे, ऐसा बोलते हैं ना। उनका ऐसा नहीं है, कभी भी पुकारो, दिन में पुकारो, रात में पुकारो, कष्ट में पुकारो, सुख में पुकारो, हमेशा सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसे कोई यार हो सकता है क्या? एनीबडी कैन बी देयर लाइक दिस हुज लव्स यू सो मच, एनी टाइम अवेलेबल टू यू, जब पुकारो तब तैयार रहते हैं आपको मिलने के लिए और मदद करने के लिए। हम पुकारते नहीं है, ये हमारा डिफिकल्टी है, लेकिन वो व्याकुल रहते हैं हमेशा। आपको इतना प्रेम करते हैं हमारे ऊपर कि जब चाहे आपके पुकार सुनने को तैयार है, बीच मझधार में उनको पुकार सकते हैं तो भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। वो हृदय से पुकारेगा कोई ना, तुरंत उसके लिए हाजिर हो जाते हैं। पुकार के देखो आप खाली, बस दैट्स ऑल, यू हैव टू ट्राई एंड सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स। जो मैं कह रहा हूं सच है, झूठ है, ऐसे ही मैं बकवास कर रहा हूं कि सच है, आप पुकार के देखो, संकट के समय उनको याद करके देखो, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है आप खुद ही अनुभव करना। किसी को पेपर में देने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव इन न्यूज़पेपर, एक्सपीरियंस योरसेल्फ ओनली कि क्या जीवन में होता है। हमारे जीवन में ऐसा एक मौका आया और हम भगवान की दया से, उनके अनंत कृपा से इस रास्ते में आ गए। मैं तो पता नहीं क्या करते आज, क्या क्या हमारे मन में योजना थी। हाँ क्या बताऊं आपको, मुझे उस समय जिस समय मैं इस मार्ग में आया उसके कुछ महीने पहले मेरे मन में एक निश्चय किया था मैंने, बताऊं क्या आपको, आपको धक्का लगेगा सुनकर जरा। मैंने निश्चय किया था कि मुझे चरस पीकर देखना है, टेस्ट करना है उसको, कि हमारे हॉस्टल में बहुत सारे लोग चरस पीते थे, मतलब क्या चीज क्या है, लोग इतने पागल क्यों है उसके पीछे। एक पूरा लॉबी का लॉबी, पूरा चरसी लॉबी थी पूरी, तो उनके संघ से, उनका कोई मित्रता नहीं थी मेरी, लेकिन उनके साथ रहने से ऐसा मन में विचार आने लगे कि एक बार तो टेस्ट करना है। और क्या बताऊं आपको, इसी बीच में मेरी भक्त से मुलाकात हुई और वो मुझे मंदिर ले गया और मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा। मैं तो पता नहीं आज मैं क्या करता। और क्या बताऊं आपको आश्चर्य की बात, जो व्यक्ति मेरे साथ में था, जिसने मुझे हरे कृष्ण मंत्र मंदिर में पहचान करा के दी किसी भक्त की, वो और मैं दोनों क्लासमेट थे। बहुत सही कहानी है, सच्ची कहानी है। और इतने हम इतने प्रेमी यार थे हम दोनों लोग, कि हम लोग हफ्ते में चार बार एक के घर में एक दूसरे घर में खाना खाते थे, इतना हमारा प्रेम था। यहीं बोरेली में रहते थे वो। तो वो व्यक्ति मेरे मित्र थे, वो मुझे हरे कृष्णा मंदिर में लेके गए, ठीक है। और मैंने वहां पर माला स्वीकार करके जप करना शुरू किया और सब कुछ नियम पालन करना शुरू किया। उसी समय मुझे पहचान करने के बाद में वो चरस का टेस्ट करने गया, फिर चरस के बाद में समाधान नहीं हुआ तो ब्राउन शुगर लेने लगा और उम्र के 35 साल में उसका देहांत हो गया। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, हम एकदम शॉर्ट कर दो, मतलब हम लोग ऐसे गए, मैं मंदिर गया, वो यहां गया। पता नहीं अगर मैं यहां नहीं जाता तो मैं भी यहां जाता, मेरा भी अंत वैसा ही होता जिसका उसका हुआ। IIT बॉम्बे में था वो बीटेक, उसको निकाल दिया गया कॉलेज से बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, वुमनाइजेशन, गैम्बलिंग, एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मैं उस समय भक्त के सहारे में नहीं जाता, हो सकता है मैं वहीं जाता, क्योंकि दिमाग इतना तेज था ना, हमारे पास बहुत दिमाग था। वो दिमाग तेज होना अच्छा भी है और बुरा भी है, यू डोंट नो उसका अंत क्या हुआ। उसके मार्क्स मेरे से भी ज्यादा आए थे IIT में। मैं मेडिकल में गया, वो IIT में गया। इस एरिया में आते मुझे उसकी याद आती, एक अच्छा काम किया उसने, मुझे भक्ति में प्रवेश तो कर दिया कम से कम इंट्रोड्यूस करके, वो अपने रास्ते में चला गया। मैंने बहुत कोशिश किया उसको लाने की लेकिन वो आ नहीं पाया, वो इतनी फिसलन पहाड़ी में था कि वो नीचे ही चला गया, ऊपर नहीं आ सका। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जीवन जो है ना वो पतनशील है, मतलब फैलिबल, कभी भी हम फिसल सकते हैं इसके ऊपर से। कहीं गलत सहारा मिल गया तो गए, निकल के काम से गए, भगवान का नाम का सहारा मिला तो बड़े भाग्य की बात है, परम परम भाग्य की बात है। इसलिए वो उसके बारे में पहचान होने के बाद में समय गंवाना नहीं चाहिए, डोंट वेस्ट टाइम। अरे मेरा अभी बच्चे का शादी होना बाकी है, अभी ये लड़की की शादी करनी बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है, अभी ये होने के बाद में फिर मैं पूरा भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, रेगुलरली सुनता हूं मैं हमेशा। लेकिन वो समय कभी आता नहीं है, जो करना है वो आज और अब करना है, कल की बात जो करते हैं वो कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। हमारे हाथ में केवल आज और अब है ना, आज और अब हम क्या कर सकते हैं, वही सच्चाई है। कल करूंगा, क्या मुझे कल करना चाहिए था, ये सब इतिहास भी कोई काम का नहीं है और भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वही हम बिलीव कर सकते हैं। अरे मैं कल, वो नेता वो क्या बोलते हैं, भारत में सब जगह पानी की व्यवस्था होगी, हम करेंगे उसको। कहां पर है, इतने गवर्नमेंट आए, 50-65 साल पूरे हो गए, अभी भी लोगों को मटका लेकर 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो कल की बातें किसने देखी है, आज दे रहे हो क्या पानी, शाम तक आएगा क्या, आई कैन बिलीव। इसलिए ज्यादा समय गंवाने के लिए यहां पर हमारे पास है ही नहीं समय, कलयुग की आयु जो है बहुत कम है, बहुत कम। उसमें भी इतने सारे कर्तव्य निभाने हैं, इतना सारा ड्यूटी करना है, इतनी मेहनत करनी है, समय कहां है हमारे पास, ऐसे ही बीतता जा रहा है। अभी तो मैं कॉलेज में था, अभी तो पता नहीं कितनी उम्र हो गई, इतनी जल्दी था कि कल कॉलेज में था, अभी तो बच्ची कॉलेज में पास होके अभी MA होकर अभी और कुछ कर रही है। टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। ज्यादा समय होने के पहले ये काम शुरू करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, दोबारा आना होगा, पता नहीं कौन से शरीर में आना होगा, कौन सी जगह पे आना होगा, क्या स्थिति होगी, नोबडी नोज। आज मनुष्य बने हुए हैं और तथाकथित सो कॉल्ड अच्छी अवस्था में, आज करना चाहिए, आज करेंगे तो कल काम आएगा, कल करूंगा तो किसने देखा है कल। इसलिए आपको सबको विनती करता हूं, आप में से बहुत लोग भक्ति करते भी होंगे, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अगर कर रहे हो तो अभी और अच्छी तरह से करना, क्योंकि समय अभी कैसा है ना, अदर साइड ऑफ द हेज, मतलब क्या, हम अभी हमारा यात्रा जो है ना वो उस तरफ शुरू हो गया, अभी जर्नी हैज स्टार्टेड, बैक जर्नी हैज स्टार्टेड, यू कांट से कि अभी लाइफ इज बिगिनिंग। मेरे ख्याल से आप में सब लोग इसी अवस्था में, खाली मेरे दोस्त खाली थोड़ा दूसरी अवस्था में, लेकिन बाकी सब लोग तो कैसा है, अभी जर्नी बैक होम चालू हो गया है, अदर हाफ ऑफ लाइफ स्टार्टेड ना, अभी और अधिकता से करना है, अभी जीवन में और शक्ति और ऊर्जा और उत्साह नहीं आएगा अभी, अभी आगे बीमारियां, शक्ति कम होना, दृष्टि कम होना, सुनाई कम पड़ना, याद कम होना, ये सब आगे शुरू हो जाएगा। उसके पहले ही उनको याद करने का अभ्यास करो, तब अंत अवस्था में उनकी याद आएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो याद कभी नहीं आएगी। एग्जाम में क्या याद आता है अपने को? एग्जाम में याद क्या आता है? जो साल भर पढ़ा है ना वही याद आता है, जो लास्ट नाइट पढ़ा है वो याद नहीं आता है, वो भूल जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक रात को एग्जाम में मैं 12th के 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई किया, सारे प्रश्न उसमें से आए लेकिन मेरे को उसका उत्तर याद नहीं आया, क्योंकि मैंने वो नींद के बीच में से निकाल के उसको पढ़ाई में दिया था, मेरा ब्रेन रजिस्टर नहीं किया उसे। इसलिए जो साल भर में शांति में पढ़ाई किया है, जिसका अभ्यास किया है, वही एग्जाम में याद आता है। उसी तरह जब शांति है जीवन में, अच्छा समय है, तब उनको याद करने का अभ्यास किया है तो ही मृत्यु के समय उनकी याद आ सकती है। नहीं तो बोलेंगे आपने तो कहा है ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आपकी गीता में तो लिखा है ना कि लास्ट में याद करना है, अभी क्यों टाइम पास करना है उसके लिए? अभी तो ऐश कर लो, तब याद कर लेंगे। उस समय वही याद आता है जो जीवन भर किया है। ऑल दैट यू हैव डन थ्रू आउट द लाइफ, जिसका आपको अभ्यास है, जो आपको सबसे प्रिय है, वही आपको उस और याद आएगा। जिस पर आपने दिल लगाया है, जिस पर आसक्ति हो गई है आपकी जीवन भर में, वही चीज आपको अंतिम समय याद आएगी। मैं डॉक्टर हूं, मेरा स्पेशलाइजेशन एंड ऑफ लाइफ में है, याद रखना। मैंने ये एंड ऑफ लाइफ लोगों को बहुत देखा है, कई साल से देख रहा हूं। वही चीज को पुकारते हैं जिस पर उनका दिल जीवन भर लगा था, चाहे वो पैसा हो, परिवार हो, बहू हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी कुछ उनका है, जहां पर दिल लगा है, उनका आसक्ति बनी हुई है, उसी को याद करते हैं। हम लोग बोलते हैं माता जी हरे कृष्णा बोलो, अभी सब कुछ छोड़ दो, तो उसी की याद करते रहते हैं, क्योंकि वही उसी का अभ्यास उनको है। कोशिश करने पर भी याद नहीं करते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं बार बार, माता जी अभी अंतिम समय आ गया है, भगवान को याद करो, मुरली वालों को याद करो, तभी वो मेरी बेटी किधर है उसको बुला लो, ऐसे ही बोलते हैं। दिस इज मिस फॉर्चून। इसे अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है। अभी अगर अभ्यास करेंगे, रोज करेंगे, दिन भर करेंगे और करते रहेंगे, तो फिर एंड में याद आएगा। जितना अभी इन्वेस्टमेंट किया ना, उसका रिटर्न्स कब मिलेगा आपको? इन्वेस्ट नहीं किया तो कैसा रिटर्न मिलेगा उसका? आज इन्वेस्ट करना है तो समय है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, सब सुकून है आसपास में, कोई ज्यादा परेशानी तो सबको है लेकिन ज्यादा नहीं है, भयंकर नहीं है, तो उस समय उनकी याद करनी। अरे तो कबीर जो कहते हैं कि दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे न कोई, और सुख में जरूरत क्या है भगवान की? इतना सब तो मैंने मेहनत किया है, उसका फल मिल रहा है, उसका क्या काम है उसके अंदर? व्हाट ही हैज डन, आई हैव डन वर्क, आई हैव वर्क्ड हार्ड, तो सुख में उसकी याद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो कहते हैं जो सुख में स्मरण करे उसको दुख काहे को होए, और आगे जाकर क्या बोलते हैं कि सुख में और दुख में दोनों में करो, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे, सुख में और दुख में हरि को मत भूलो, तो याद करते रहो। मैं तो कहता हूं दुख में याद करना आसान होता है, क्योंकि दुख में दर्द से वजह से हम लोग ओ कृष्णा भगवान कहां पर हो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन सुख में ना नहीं याद आता है। इसलिए सुख दुख से भी बुरा है। जिस चीज में भगवान की विस्मृति होती है, जिस चीज की वजह से भगवान की हम लोग याद नहीं करते हैं, वो चीज अशुभ होती है, चाहे वो सुख क्यों ना हो, यश क्यों ना हो, कीर्ति क्यों ना हो। जो चीज भगवान को भुला देती है वो अशुभ होती है। अगर वो सुख होता है जो भुला देता है तो भी वो अशुभ है। इसलिए भक्त लोग दुख को पुकारते हैं, क्योंकि दुख जो है वो वरदान मानते हैं, कि दुख से उनकी याद आती है, तुरंत याद आती है उनकी, और पुकारना भी होता है, प्रार्थना भी दुख में ज्यादा होती है। हम तो कहते हैं दुख सुख को मत भूलो, दुख और सुख दोनों अवस्था में इक्वली रोज के रोज इस अभ्यास को जारी रखो। दैट इज व्हाट आवर रिक्वेस्ट इज। चाहे दुख का दिन आ जाएगा या सुख का दिन आएगा, आपका मॉर्निंग का प्रैक्टिस जो है वो चालू रखो। अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, सुख हो या दुख हो, आपका जो कोटा है नाम स्मरण का वो आपको करना है। तब वो बोलेंगे हाँ भाई मेरा भक्त है, छोड़ता नहीं मुझे, ये चाहे दुख हो सुख, मैंने इतना फटका लगाया फिर भी याद करता है मुझे, तो उसी को फिर बुला लेते हैं, अभी तैयार हो गया तू आ जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं मेरी क्षमता के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बिना संकोच पूछना, आप कोई मन में आपकी बात है, मेरे बताए हुए बात पर, बताए हुए विषय पर होगी चर्चा तो भी ठीक है, उसके बाहर का प्रश्न होगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिव को माना है, ऐसा है ना, शास्त्र जो है ना, हमारा पूरा शास्त्र जो है ना,